ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 26 श्लोक संख्या 48। भगवान की मत्स्य अवतार।
जत सेवयाग्नेरि परुद्र रोदनम् जत सेवयाग्नेरिवरुद्ररोदनम् पुमान बिजोहान मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णम निजमेश सोऽद्वयो भूयात् स ईशा परमो गुरो गुरु जत सेवयाग्नेरिव रुद्र रोदनम् पुमान बिजोहान मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णम् निजमेश सोऽद्वयः भूयात् स ईशा परमो गुरो गुरु जत सेवयाग्नेरिव रुद्र रोदनम् पुमान बिजायान मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णम् निजमेश सोऽद्वयः भूयात् स ईशा परमो गुरो गुरु
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, जत से भया जिनकी सेवा से भगवान की सेवा से अग्ने अग्नि की स्पर्श में ईब मानो रुद्र रोदनम चांदी या सोने की टुकड़ा पवित्र हो जाता है। पुमा मनुष्यों का विजया त्याग करता है। मलम संसार की सारी गंदकी वस्तुएं। आत्मना अपनी तमहा तमोगुण जिसके अंतर्गत मनुष्य पवित्र तथा अपवित्र कर्म करता है। भजेता असली रूप को प्राप्त करता है। वर्णम मूल पहचान निजम अपनी ऐसा ऐसा स वह अव्यया अव्यय भूया वो स वह ईसा भगवान परम गुरु गुरु परम गुरुओं की गुरु। अनुवाद। भव बंधन से जो छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्म से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने के टुकड़ा अपना सारा मल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय भगवान आप हमारी गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं की आदि गुरु हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य जीवन अपने को शुद्ध बनाने के लिए तपस्या करने के निमित्त है। मनुष्य जीवन अपने शुद्ध बनाने के लिए तपस्या करने के निमित्त है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तम शुद्धे। प्रकृति के गुण की कर्मस के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। कारणम गुण संगस्य सत असत जो नि जन्मसु। अते मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस कर्मस से अपने को शुद्ध करना है, जिससे उसे अपना आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके और जन्म मृत्यु की इस चक्र में उसे न पड़ना पड़े। कर्मसहीन बनने की संस्तुत विधि है भगवान की भक्ति। आत्म साक्षात्कार की अनेक विधियां हैं, जथा कर्म, ज्ञान तथा योग, किंतु इनमें से कोई भी भक्ति की विधि के तुल्य नहीं है। जिस प्रकार सोने तथा चांदी की मल को मात्र जल से धोकर नहीं अपितु अग्नि में तपाकर दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार जीव को भक्ति के द्वारा उसके मूल स्वरूप में जागृत किया जा सकता है। जत सेवया। कर्म, ज्ञान या योग से नहीं, चिंतन परक ज्ञान या जोगस योग हसन प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं हो सकता। वर्णम शब्द किसी के मूल स्वरूप की कांति को बताता है। वर्ण, मूल वर्ण, चांदी या सोने की मूल कांति चमकीली होती है। इसी प्रकार जीव की मूल कांति आनंद की कांति है, क्योंकि जीव सच्चिदानंद विग्रह का अंशरूप है। आनंदमय अभ्यासत। सच्चिदानंद विग्रह अर्थात कृष्ण का अंश होने के कारण प्रत्येक जीव को आनंदमय होने का अधिकार है। तो फिर प्रकृति के भौतिक गुण द्वारा मलिन कर्मस के कारण जीव कष्ट क्यों उठाए। जीव को चाहिए कि शुद्ध हो और अपना मूल स्वरूप फिर से प्राप्त करे। ऐसा वह भक्ति द्वारा ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य को भगवान की शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ गुरु गुरु अर्थात गुरुओं की गुरु कहा गया है। भले ही हमें भगवान के प्रत्येक संपर्क करने के सौभाग्य प्राप्त न हो, किंतु भगवान का प्रतिनिधि साक्षात भगवान ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा प्रतिनिधि ऐसा कुछ भी नहीं करता जो भगवान द्वारा न कहा गया हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की ये परिभाषा दी है, यारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। प्रामाणिक गुरु वो है जो अपने शिष्यों को कृष्ण द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार उपदेश देता है। प्रामाणिक गुरु वो है जिसने कृष्ण को गुरु स्वीकार किया है। यही गुरु परंपरा प्रणाली है। आदि गुरु तो व्यासदेव है, क्योंकि वे भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं, जिनमें लिखी सारी बातें कृष्ण से संबंध रखती हैं। अतः गुरु पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। अंततः आदि गुरु कृष्ण हैं, नारद उनके शिष्य हैं और व्यास नारद के शिष्य हैं। इस प्रकार क्रमशः गुरु परंपरा प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता यदि वो यह नहीं जानता कि कृष्ण या उनकी अवतार क्या चाहते हैं। गुरु का संदेश भगवान का संदेश है और वह संदेश है सारे विश्व में कृष्ण भवनामृत का प्रसार। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री राधिका रमण जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की जय। तो इस अध्याय में भगवान आश्रित भक्तों को कैसे अपने तत्व की प्रकट करते हैं ये शिक्षा दी है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं इस भक्ति योग को मेरे आश्रय में ही अभ्यास करना चाहिए। मया सक्त मना पार्थ योग जुंजन मदाश्रय। तो इससे क्या होता है ना असंशय समग्रमा जथा ज्ञान सचित अश्रम। संशय रहित सारे तत्व समग्र तत्व ब्रह्मा परमात्मा और भगवत तत्व ये पूरी तरह से भक्त को अनुभूत हो जाता है वा अनुभव कर लेता है। क्योंकि भक्ति योग ही भगवान की पर ही आश्रित है और भक्ति योग का फल भी भगवान है। इसलिए मीन्स और इसके गोल ये दोनों ही भगवान हैं। इसलिए भक्तों को ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, सिर्फ समर्पण सीखना चाहिए। मदाश्रय आश्रय शेल्टर। और भगवान किस प्रकार अपने तत्वों को एक भक्त के सामने प्रकट करते हैं इसे मत्स्य अवतार की दृष्टांत से सिखाए। ये आश्रय तत्व है। तो कहीं कहीं ये 10 विषय में जो श्रीमद् भागवतम की लास्ट क्या है तत्व सर्ग विसर्ग स्थान पोषण रोतया मनोन्तर ईशानुकथा मुक्ति और आश्रय। तो आश्रय आखिरी तत्व है। तो कब कहीं कहीं कोई स्कंद में आश्रय तत्व भी की चर्चा हुई है संक्षेप रूप में, परंतु आश्रय तत्व है बारमात है बारम स्कंद आश्रय। तो सत्यव्रत मुनि स्नान कर रहे थे तो जल में मछली है ना वो पुकारने लगा राजन मुझे बचाइए। तो सत्यव्रत मुनि की मन में दया आ गई। एक भक्त के मन में एक बहुत बड़ा सिम्टम्स क्या है तितिक्षा और करुणा दो सिम्टम्स। यदि एक शब्द में व्यक्त किया जाए कि एक भक्त का क्या लक्षण है वैष्णव का तो क्या है सहिष्णुता और करुणा। तो वो डेवलप नहीं होता है, प्रयास करना चाहिए सहिष्णुता और दया। तो सत्यव्रत मुनि के मन में बहुत करुणा उत्पन्न हुआ। छोटी मछली है पुकार रहे हैं तो उसको उठा के लाए कमंडल में रखे। पहले तो अंजड़ में उठाए फिर कमंडल में रखे। ऐसा बढ़ते गए फिर आखिर में उनको फिर वही समुद्र में छोड़ना पड़ा जहां आश्रय था। तब फिर सत्यव्रत मुनि सोचने लगे आप एक साधारण मछली नहीं है, मेरे साथ आप बहुत रहस्य कर रहे हो बताइए। तब भगवान फिर कहे मैं तुम्हारे पर अनुग्रह करने के लिए भगवान की विशेष एक अनुग्रह है। जब किसी को अपने विषय में बतलाना चाहते हैं तो भगवान पहले उन पर क्या करते हैं अनुग्रह करते हैं। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है तेसाम एवानुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्ता ज्ञान दीपेन भास्वता। तेसाम अहम अनुकंपार्थम अनुकंपा अनु का मतलब है पीछे और अनु का मतलब है साथ। तो भगवान का हृदय कंपित हो जाता है किस पर ना जो भजन में लगे रहते हैं। इसकी परिभाषा पहले बताए हैं, अहं सर्वस्य प्रभवमत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुद्धा भाव समन्विता मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तं परस्परं कथयन्तस्य मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततजुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिजोगं तं जनमाम् उपजान्ति ते। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं उनको बुद्धि जोग देने की बात भी फिर कुछ शेष रखता हूं, कहते फिर तेसाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तम। अरे भाई जब ज्ञान दे दिए फिर अज्ञान कहां रहा, प्रश्न उठ सकता है ना, अज्ञान कहां रहा, तमोगुण कहां है, नहीं। कभी कभी भक्तों के मन में ग्लानी रहती है, अर्जुन के मन में, गोपियों के मन में कसाय रह जाता है, भगवत नहीं है। उस कसाय को मैं स्वयं दूर करता हूं। जैसे नई ब्याही हुई जो बछड़ा है उसके शरीर में लगा हुआ गंदगी को, लार को कौन साफ करती है, और कोई नहीं, स्वयं गो माता ही उसको चाट चाट करके साफ करती है। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो भजन करने वाला है, मेरी पर आश्रित है, उनकी जो अज्ञान से उत्पन्न तम अज्ञान अजम तमह नाशयामि, क्या है भक्ति जोग में तीन अनर्थ उत्पन्न होती है, जानते हैं भक्ति में तीन अनर्थ आते हैं साथ साथ, जो चैतन्य महाप्रभु इंडिकेट किया है, क्या है, प्रतिष्ठा ये का अनर्थ है, ये भक्ति जात अनर्थ है प्रतिष्ठा, और भावस्वंदता आई एम बेटर, भक्ति विनोद ठाकुर देखे भावस्वंदा, ये कभी कभी गोपियों के मन में उत्पन्न होती है, क्या कि मैं बेटर हूं, दूसरे गोपियों से मैं बेटर हूं क्योंकि कृष्ण ने मुझे मान दी, भावस्वंदा। और तीसरा है कसाय, कसाय रहता है जिस स्वरूप की प्राप्त होने पर भी कसाय रहती है, भाव स्थिति में भी कसाय रहता है। कसाय क्या है आप जानते हैं कि एक प्रकार की करुणा की भावना है, जैसे भरत महाराज के अंदर। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि किस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम उठाना चाहिए, किसको त्याग करना चाहिए। कभी परिजन के प्रति बहुत दया उत्पन्न होती है, क्योंकि भक्त हैं, मेरे बच्चे भी भक्त हैं, कैसे मैं लगाव छोड़ दूं, तो कहते भाव कसाय, भाव स्पंदन और भाव कसाय। इसलिए कुंती महारानी ये कहती है स्नेहतासन इमं सिंधी दृढ़ दृष्णिसु पांडुसु, ये एक पास है, ये भी सुखमा अनर्थ है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि नासयाम आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वत। इस प्रकार भगवान ज्ञान के प्रदीप अर्थात प्रेम प्रेम प्रदान करते हैं। प्रेम पूरी तरह से जब प्रेम प्राप्त होता है तब ये सारे कसाय धुल जाता है। तो यहां पर ये दृष्टांत दी गई है कि जैसे खाद जल करके राख हो जाता है, मम उर्जिता भक्ति, एक है ना श्लोक है भागवत में, कौन सा है कि जब भक्ति तीव्र होता है, प्रेम की बुद्धि होती है तो अंदर के सारे कलमस नष्ट हो जाता है। क्या है? एकादश स्कंद में मम उर्जिता भक्ति, मम उर्जिता भक्ति, जो भगवद्गीता में कहा गया है, क्या है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं जथे ग्रासी है मम उर्जिता भक्ति। जैसे यज्ञ अग्नि में बहुत जोर जल रहा है यज्ञ अग्नि, तो कितने भी गीला लकड़ी क्यों ना हो उसको जला देता है, यदि अग्नि बहुत जोर है, प्रज्वलित है। तो उसी प्रकार भगवान के प्रति जो उत्कंठा है, जो प्रेम है, उसमें जो धर्म की मर्यादा है, उसको यदि हम तोड़े, उसकी परिणाम जो पाप भुगतना पड़ता है वो भुगतना नहीं पड़ेगा। इसलिए तो भगवान का है अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। धर्म को त्याग, ये कह रहे हैं कि धर्म त्याग करने से जो पाप होगा, कि भक्त के अंदर तो कोई पाप नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए वो धर्म के नियम को अपने स्वजन संबंधों के साथ सब छोड़, परंतु एक अनुसरण भजन, बस भगवान का आश्रय ले लिया, तो ये धर्म को छोड़ने के कारण जो पाप हुआ उसको कहते इस पाप से मैं बचा लूंगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है, क्या जलाऊंगा? प्रेम की प्रज्वलित अग्नि। आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, एकदम प्रकाशित कर दूंगा। जथे घ्नासी समी भग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा जथे घ्नासी। तो ये है भगवान इसी प्रकार भक्तों के ऊपर अनुकंपा करते हैं। तो संतप्रत मुनि ये कह रहे हैं कि जत सेवया, जिनकी सेवा से क्या होता है, न अग्नि इव रुद्र रोदनम, रुद्र का मतलब है चांदी, बस सोना, रोदन का मतलब है दूर हो जाना, उनकी कड़मस दूर हो जाना, जो खाद जलाने के बाद जो दूर हो जाता है, कहते रुद्र रोदन। तो उसी प्रकार इब पुमान विजयान मलमात्मना स्तमहा, तो भगवान की सेवा से पुमान मनुष्यों की विजयात दूर हो जाता है, क्या? मलम, संसार की मल, ये दूर हो जाता है। संसार की मल क्या है? हाँ हाँ, शरीर का मल क्या है? शरीर का मल पसीना, शरीर का मल ही पसीना है वास्तविक, और शरीर से भी मल, भोजन का भी मल निकलता है, लेकिन भोजन भी ना करें तो पसीना से भी मल निकलता है। लेकिन आत्मा के लिए मल क्या है? द्वेष। आत्मा के लिए मल क्या है? द्वेष। तो काम उसकी सहायक है, ये सब काम की पार्ट है, लेकिन मूल इंग्रेडिएंट क्या है? द्वेष, इच्छा और द्वेष, द्वेष से उत्पन्न होता है भगवत विमुक्ति। कहते पुमान मल आत्मना स्तमहा, ये आत्मा के लिए मल है, मनुष्य का आत्मा के लिए मल क्या है? द्वेष, इच्छा द्वेष। तो भगवान की हम सेवा करते हैं तो प्रीति उत्पन्न होने पर क्या होता है? तीन लक्षण प्रकट होता है। दसवां स्कंद की सातवां अध्याय की पहला श्लोक क्या है?
जत्सुनयम पुमान उपेत्या रति। भगवान की कथा श्रवण करने से जब भक्ति उत्पन्न होता है तो क्या है ना, जो भक्ति करने में जो अरुचि है वो बीमारी दूर हो जाता है। दूसरा, भक्तों की प्रति साख्य भाव तदेव हारम निज आत्मनः जना, ऐसा कुछ है कि भक्तों के प्रति साख्य भाव उत्पन्न होता है और भगवान के प्रति प्रेम, ये तीन लक्षण है। तो जब मन दूर हो जाता है हृदय से तो ये सिम्टम्स प्रकट होता है, अरुचि द्वेष, भक्तों के साथ द्वेष जो है वो दूर होता है और भगवान के प्रति प्रीति। तो कह रहे पुमान विजयान मल आत्मनास्तमः, तो भगवान की सेवा से जत सेवया, जिनकी सेवा से इस प्रकार आत्मा की मल, तीन प्रकार के मल दूर हो जाता है अर्थात ये सिम्टम्स प्रकट होता है। और फिर क्या लाभ होगा ना, भजेत वर्णम निजमेश स्वव्ययः, भजेत, भजेत का मतलब क्या है, प्राप्त करना, अचीव, वो प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है, निज वर्णम, अपना जाति को प्राप्त करता है, वर्ण का मतलब जाति नहीं है यहां पर, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। हमारा जाति क्या है, हाँ है ना, अच्युत गोत्र, अच्युत, ये जाति कौन सा कि भजन में है ना, सही, हमारा जाति वैष्णव भजन है और आगे क्या है, कुल, हमारा क्या है, कुल और जाति भी है, जाति और पति भी है, वही कृष्ण है। याद है किसको, नहीं हाँ, तो ये है कि वास्तव की जाति क्या है, हम सब एक ही जाति हैं। कौन सी जाति है, हम सबका एक ही जाति है, दासत्व, भृत्वत्व, क्योंकि भगवान है भोक्ता और जीव क्या है, भक्त, जीव क्या है, भक्त, भक्त व भोग्या, वही जाति है। इसलिए हम कह रहते हैं ये भक्त संघ, भक्तों की जाति है। तो निज वर्णन एसम सोव्ययः, कि अपने मूल स्वरूप को, अव्यय स्वरूप को, जो पहचान कभी बदलता नहीं है, जैसे लड़की शादी किया तो किस जाति में चल जाता है, जो पति की कुल का है तो उसमें एडमिट हो जाती है कि नहीं, कोई लड़का किसी और दूसरे लोग ने उसको एडप्ट कर लेते हैं तो उस जाति के हो गए, है कि नहीं, ये सब परिवर्तनशील है। परंतु एक अव्यय वर्णम व अव्यय जाति है, वो क्या है, वो है भक्त। इसको प्राप्त करते हैं भगवान की सेवा से। कितनी चीज अचीव होता है देखिए, एक तो कर्मसु शुद्ध हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि अपने स्वरूप को प्राप्त किए। फिर कहते भूयास इस परमम गुरुर गुरु, इस सेवा के द्वारा भगवान किसकी उपदेष्टा बनते हैं। भगवान जब कह रहे ना मत स्मृति ज्ञान अपहुनंच, जब किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं तो गुरु बन करके, जब गुरु बनेंगे तो ज्ञान देंगे, और जब भगवान किसी के साथ चीटिंग करेंगे तो उसका अपहरण कर लेंगे। कृष्णा बंदे जगत गुरु, वास्तविक वो गुरु हैं, वह गुरु परंपरा व्यास पूजा के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हम व्यास पूजा सेलिब्रेट करना चाहिए। जब गुरु प्रकट रहते हैं हम बहुत हार्ड वर्ड में पूजा करते हैं, और गुरु जब चल जाते हैं तो इतने शिष्य इकट्ठा नहीं होते हैं, वो भाव नहीं रहती है। कारण क्या है कि हम वास्तविक गुरु तत्वों से अनभिज्ञ हैं, गुरु परंपरा के बारे में अनभिज्ञ हैं। क्योंकि जो हम कहते ना एवं परंपरा प्राप्ति, परम से पर तक आता है, परम देन नेक्स्ट पर, सुपरियर टू इन्फीरियर। तो जब हम परंपरा को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो गुरु के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वो है सेंटीमेंट, चपल श्रद्धाएं। इसलिए हमारी जो सिद्धांत है, हम जब गुरु को जब ये करते तो व्यास पूजा के रूप में मनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यासदेव, कृष्ण बंदे जगत गुरु। और प्रभुपाद कहते हैं कि व्यासदेव रियली गुरु है, क्योंकि उस वैदिक साहित्य के द्वारा कृष्ण के महत्व को समझाए, सभी जीव के अंदर प्रकट किए। नित्य बद्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान से लागी वेद, व्यास करिला वेद पुराण, लोकस्य जानतम विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। क्योंकि साधारण बद्ध जीव के अंदर कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई संबंध ज्ञान है नहीं, सब भुले भटके हैं, बन जा रहे। तो इसलिए कृष्ण अनुकंपा करने के लिए व्यासदेव के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य को रचना की, जिससे कि हम फिर अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस सच्चिदानंद स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान तो है, एक प्रकृष्ट है जिसे कि संबंध जोड़ता है, परंतु असली भक्ति होने पर ही हम भगवत स्वरूप को जान पाएंगे। भक्तिया मांग अभिजान आदि और सब रह गए। भगवान ये नहीं बोले कर्म्याभ्यम अभिजान आदि, ज्ञानी नाम अभिजान आदि, जोगी नांग अभिजान आदि नहीं, भक्तिया मांग। इसलिए अनन्य भक्ति होने पर भगवान कहते मैं उनको सुलभता से सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। कौन से श्लोक है? अनन्य चेता सततम जो मम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्यजुक्तस्य जोगिनः। अनन्य चेता उनको प्राप्त होगा, मुकुंद को प्राप्त नहीं हुए क्योंकि अनन्य चेता नहीं था, सतत नहीं था, लेकिन रघुनंदन ठाकुर प्राप्त। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं मुकुंद बताओ कौन बाप है कौन बेटा है, नहीं नहीं ये मेरी बाप है मैं उसके बेटा। अरे बाप बेटा बन गए, जिससे कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है वही बाप है। कभी कभी तो बाप बेटा को कहता अरे मेरे बाप आ जाओ, है ना, कभी लाल भी बोलते कभी बाप बोलते। तो रघुनंदन की इतनी प्रीति थी भगवान के साथ, हाथ में खिला दी, कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते, मैं बाप को सुभाता हूं। ये है अनन्य चेता, तस्य हम सुलभं पार्थ नित्य युक्त से जोगे, इतनी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं भगवान। तो यही शिक्षा दी है जत सेवया, जिनकी सेवा से, और स्वयं कृष्ण ही मार्गदर्शक बनते हैं, तब कहेंगे हमारे को जरूरत नहीं है दीक्षा लेने के, शिक्षा गुरु की जरूरत नहीं, कृष्ण मेरी गुरु है, लो कृष्ण से शिक्षा। लेकिन उसके पहले वो कहे हैं अनाद्य दिद्योपहतात्म संविदः स्तनमूल संसार परिश्रमातुरः। वो व्यक्ति कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करता है। कौन? जो ऐसे सोचता है कि मानंद काल से अविद्या से ग्रस्त हूं, ठोकर खा रहा हूं, संसार के ताप मुझे सता रहा है, कृपा करके आप अपने चरण में ले लीजिए। भजन भी गाते हैं ना, क्या कृपा करके आप बुला लेना। तो वो व्यक्ति हाँ जो आतुरता से पुकारता है, भगवान उनके लिए गुरु है, सचमुच गुरु बनते हैं। और सारी जो हमारी फ्लांस हैं, हाँ जितने सब कार्यक्रम हैं, उस तत्व को समझने के लिए गुरु की दीक्षा, गुरु की शिक्षा, सेवा, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत सब रखना, तीर्थ यात्रा करना, गंगा जमुना में नहा लेना, भागवतम क्लास में बैठना, जप करना, ये एक ही उद्देश्य इंटेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अचीव करने के लिए, वो क्या है, क्या है? माम एकम शरणम गच। एक ही हाँ परम सत्य की शरण में जाने के लिए। और यदि गुरु वो शिक्षा नहीं देता है, वो गुरु नहीं है, क्या है? गुरु क्या है? हाँ चार पैर वाले, खेती में उपजोग होता है, भूसा खाता है, खेती में लगे। कृष्णा बंदे जगत गुरु साख्या धरिपे न समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावावत एव सद्भी। साक्षात हरि कैसे ना, समस्त शास्त्री जो शास्त्र में रेकमेंडेड है, उस शिक्षा को जो यथारूप डिलीवर करता है, ही इज परफेक्ट गुरु। अदरवाइज प्रभुपाद बोलते हैं कभी कभी गुरु भी गढ़ बन जाते हैं, कहते मैं उसके मुंह पर लात मारूंगा, वो गढ़ है, मैं देखाऊंगा ही इज अ डग। गुरु कभी कभी ऐसे व्यास पूजा के बहाने पर भगवान भी बन जाते हैं, किंतु प्रभु ज प्रिय तस्य, ये समझना चाहिए, इज वेरी डीप। इसलिए गुरु तत्व को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। जथा देवे तथा गुरु तस्य तम कथितम हेरतम प्रकाशंति महात्मा, तब फिर प्रकट होगा अनन्य भक्ति के द्वारा। भगवान स्वयं ये तत्व को प्रकट करते हैं कि कैसे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, किसकी शरण लेना चाहिए? गुरु की, कृष्ण को। लोग कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े कहां को करे, और क्या बोले, गोविंद बोले, तो कौन बड़ा हुआ? इसलिए लोग भी बना दिए, क्या बना दिए, उनकी मतलब के अनुसार वो भी वैदिक सूत्र भी बना दिए, क्या बना दिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु की धज्जियां उड़ा दी गुरु ब्रह्मा हो गए, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्र। वास्तविक गुरु कौन है? ब्रह्मा। वास्तविक गुरु कौन है? विष्णु परम ब्रह्म। इसलिए स्वयं कृष्णा शंकराचार्य कह रहे कृष्णा बंदे जगत गुरु, और यही कह रहे हैं ये हमारी आचार्य है सत्यव्रत मनु, मनोन्तर में आते हैं कहते यही है। विमुक्ति दो न परमं गुरुर भवान, आप हमारे गुरु बन जाइए, आपकी चरण कमल जब ये भव सागर को पार कराता है तो हम फिर किसकी चरण पकड़े। वही गुरु सिखाते हैं कि कृष्ण के शरण में जाओ। लेकिन कुछ ऐसे व्याख्याकार कहते हैं मामेकम, मेरी शरण में आओ, मैं उपदेश दिया ना, गुरु कौन हुआ, मैं हुआ, आ जाओ ना। लालची गुरु क्या है? दोनों नरक की ठेलाम ठेला, क्या बोलते हैं, दोनों नरक के ठेलियों में ठेला। कुत्ते की पूछ पकड़ करके कोई कहता है भाई पार कर लूंगा समुद्र, कुत्ता भी डूब गया चेला भी डूब गया। ये सब हाल है गुरु शिष्यों के। इसलिए कृष्ण को ही गुरु रूप में स्वीकार करें और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को एवं परंपरा प्राप्त। कुछ लोग भी कहते हैं कृष्ण नहीं, कृष्ण ही बात नहीं कहेगा अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जा। कहते तमेवम शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। कहते हम है ना जिसको इंडिकेट किया कि उनकी शरण में जाओ, यही है जो लोग शिक्षा देते हैं इनकी शरण में जाना चाहिए। क्रिटिकल क्वेश्चन अव्यक्तम व्यक्ति आपन्ना, ये श्लोक को भी लेकर ही कहते हैं मन्यन्ते माम बुद्ध है। बुद्ध लोग सोचते हैं, क्या बुद्ध लोग सोचते हैं कि मैं शरीर धारण किया, अरे भगवान निराकार पहले से ही है, ये बुद्ध लोग ने उनको आकार बना दिया। मिस इंटरप्रिटेशन। कहते अव्यक्त था अभी व्यक्त हो गए, अबुद्ध है सोचते हैं। तो इसी प्रकार गुरु के शरण में जाकर की शास्त्र के अर्थ कोई समझ नहीं सकता, ना ही कृष्ण के शरण में आ सकता है। इसलिए प्रामाणिक प्रतिनिधि की आवश्यकता है। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सब्दे पार परे च निष्णांतम ब्रह्मणि उपाश्रयम। जो पूरी तरह से भगवान के पर आश्रित हैं और जो शास्त्र ज्ञान में भली भांति निपुण हैं वही वास्तविक क्या है, गुरु है। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, इसको लक्षण दिया गया है। आठ श्लोक को यदि हम भली भांति अध्ययन करें तो गुरु के लक्षण को हम जान सकते हैं। निकुंज जो न रति केली सिद्धि जजाली भीर जो निरपत तिरपेक्षणीय तत्रापि द्रख्यात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण। जो निकुंज लीला में लगे हैं आली मतलब गोपियों के साथ, श्री राधिका माधवयोर पारव माधुर्य लीला गुणरूप नामना प्रतिक्षणा स्वाद अनुलोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरण। जैसे माधुर्य लीला में हो गए स्त्रियों के साथ डांस करने वाला गुरु बनेंगे। आप बताओ एक संस्था था वो महाराष्ट्र में कौन सी जगह है, नासिक के पास, वो स्वामी जी रात को दांडिया है ना गोपियों के साथ खेल रहे हैं। कहते हम हो गए कृष्ण रास की कुछ खास था इस रात को, तो इससे से बहुत धोखा देते हैं। हाँ जो अपसिद्धांत है सो फैल रहा है समाज में, उसको रक्षा करने के लिए बचाने के लिए हमारे गोस्वामी ने इस प्रकार शास्त्रों के सिद्धांत दिए। अपसिद्धांत ध्वंत हारिणे भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर, ये समाज में फैला हुई जो अपसिद्धांत है, यहाँ तक कि हमारी चैतन्य महाप्रभु का अनुजाई के बीच में भी जो अपसिद्धांत फैलता था उसको भी रोके, अदरवाइज हमारी भक्ति क्या हो जाएगा, भावुकता हो जाएगी, ये साइंटिफिक नहीं होगा सेंटिमेंट हो जाएगा। इसलिए उसे बचना चाहिए अपसिद्धांत गुरु। इसलिए मनुष्य इस परम गुरु के लक्षण को जानकर के उनकी शरणागत होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की इच्छा। तो आचार्यों का है कैसे समय हो गया है, किसकी कोई प्रश्न है, समाप्त करते हैं। प्रसाद की प्रतीक्षा है इसलिए प्रश्न को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निदाय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि गौर।